ओम शांति, ओम शांति। सुबह के सेशंस में राजयोग सीख रहे हैं। कल एक सेशन हुआ, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए दीजिए इसका। कल फर्स्ट लेसन हुआ, आज सेकंड लेसन देखने जा रहे हैं। वैसे राजयोग के तीन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो कल हम सब ने देखा, स्वयं की पहचान, मैं कौन हूं, यथार्थ परिचय स्वयं का। और सेकंड स्टेप जो आज के दिन, आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं, वो है परमात्मा का यथार्थ परिचय। और कल सवेरे के सेशन में होगा थर्ड लेसन, थर्ड सेशन, वो है आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन हम कैसे जोड़े। क्योंकि राजयोग का अर्थ ही है, योग का अर्थ है मिलन, जोड़, कनेक्शन। वियोग का अर्थ है अलग हो जाना, बिछड़ जाना, दूर हो जाना, है ना। तो यहां योग किसका, किसके साथ है। वैसे तो हम सभी बॉर्न योगीज हैं, जैसे जन्म से ही हम योगी हैं। क्यों योगी है, किसी ना किसी को, व्यक्ति को या फिर वस्तु को हम निरंतर याद करते हैं, है ना। तो जब हम वस्तु को याद करते हैं, वस्तु के साथ योग जुड़ जाता है। व्यक्ति को याद करते हैं तो व्यक्ति के साथ योग जुड़ जाता है। लेकिन क्या वस्तु और व्यक्ति के साथ योग जोड़ने से आत्मा पवित्र बन जाएगी, आत्मा श्रेष्ठ बन जाएगी, आत्मा सशक्त हो जाएगी? क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? नहीं ना। हाँ, अगर कोई ऐसे व्यक्ति हो, धर्मात्मा, महात्मा, ऐसे कुछ एनर्जी लेवल उनका बहुत श्रेष्ठ हो, उनके साथ जब योग जुड़ता है तो फिर थोड़ा बहुत लाभ मुझे आत्मा को मिलती है। लेकिन परमात्मा के साथ योग जोड़ने से, योग लगाने से वो आत्मा सर्वश्रेष्ठ बन सकती है। वो कैसे, इस सिंपल फिलॉसफी ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या कहता है, फ्रॉम अ डेंसर एरिया वो फिर लोअर लेवल में वो चला जाता है एनर्जी। हमेशा एनर्जी फ्लो कहां से कहां फ्लो होता है, हायर लेवल से लोअर लेवल वो एनर्जी फ्लो होता है। अगर मैं आत्मा हायर लेवल के साथ जोड़ती हूं, और हाईएस्ट लेवल एनर्जी किसकी है, परमात्मा की है, और उनके साथ जब मैं जोड़ती हूं वो फिर फ्लो, एनर्जी फ्लो मुझ आत्मा में होती है। ये सिंपल लॉ है, राइट। तो वो जब जोड़ने के लिए, परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए, फिर परमात्मा का परिचय होना जरूरी है। क्योंकि परमात्मा का परिचय क्यों होना जरूरी है, क्योंकि इस संसार में परमात्मा को लेकर के बहुत सारे मतमतांतरे हैं। कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, तो बहुत सारे मतमतांतरे हैं। लेकिन इतने सारे मतमतांतर होने के बावजूद भी सभी धर्म वाले क्या कहते हैं, परमात्मा एक है। अनेक परमात्मा नहीं कहेंगे, गॉड इज वन, परमात्मा एक है। जब परमात्मा एक है तो उनका अस्तित्व, उनका परिचय भी एक होना चाहिए। हाँ, समय प्रति समय हम अलग अलग रूप से, अलग अलग रूप से हम उनको याद करते आए हैं, उनके साथ कनेक्शन जोड़ते आए हैं, लेकिन ओरिजिनली जो यथार्थता है उनके साथ जोड़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि लेस एनर्जी लॉस होता है उससे। तो कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने से वह एनर्जी लॉस कम होने के कारण से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना बहुत जरूरी होता है। तो फिर परमात्मा का परिचय क्या है? जैसे आत्मा कहते हैं उनको परम आत्मा कहते हैं। वर्ड वो शब्दों को अगर देखते हैं, आत्मा, मैं आत्मा हूं, वो परम आत्मा है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं और परम आत्मा सुप्रीम सोल वो भी फिर ज्योति बिंदु स्वरूप होना चाहिए। क्योंकि सन शोज फादर, जैसे मैं बच्चा हूं परमात्मा की, तो मुझ आत्मा के अंदर परमात्मा के कुछ तो ट्रेट्स होंगे ना, कुछ तो संस्कार होंगे, कुछ तो ऐसे होगा, तो फिर वो परमात्मा भी ऐसे होना चाहिए। लेकिन सिद्ध कैसे करेंगे? सिद्ध कैसे करेंगे? क्योंकि कई चीजें सिद्ध करना होता है, कई चीजें सिद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे परमात्मा ज्योति बिंदु कैसे हो सकते, दूसरा रूप क्यों नहीं ले सकते। ये रहने दो उसको भी प्रोजेक्टर। जैसे परमात्मा को सिद्ध करने के लिए 5 मापदंड है। परमात्मा वो है, सबसे पहली बात है, परमात्मा वो है जो सर्वधर्म माननीय होना चाहिए। सर्वधर्म वाले ये मानना चाहिए कि हाँ ये मेरे परमात्मा हैं। क्योंकि परमात्मा तो यूनिवर्सल है, कोई केवल एक धर्म के परमात्मा नहीं हो सकते। ऐसे उनके पर्सनालिटी होना चाहिए जो सब धर्म वाले मानना चाहिए, है ना। और दूसरी बात, वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, उनसे कोई ऊंचा, उनसे कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकते। इसका मतलब है वो किसी भी मां के गर्भ में से जन्म नहीं ले सकते। क्यों? अगर जन्म लिया, शरीर लिया, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माता पिता उनसे बड़े हो गए, टीचर गुरु उनसे बड़े हो गए, श्रेष्ठ हो गए। तो इसीलिए ये शरीर में आ ही नहीं सकते, या मां के द्वारा वो जन्म नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो सर्वोच्च है, उनसे ऊंचा कोई हो नहीं सकता। और तीसरी बात, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ जानते हैं, वो ज्ञान का सागर है और आलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिमान है, उनसे कोई और शक्तिमान वो नहीं हो सकते। और चौथी बात है सर्वोपरि, सब चक्र से वो न्यारे हैं, जनन मरण के चक्र से न्यारे हैं, दुख सुख के चक्र से न्यारे हैं, सतो रजो तमो के चक्र से न्यारे हैं, सर्व से न्यारे। वो सर्वोपरि क्यों है? क्यों होना जरूरी है सर्वोपरि? सर्व से न्यारा, सर्व से ऊपर, सर्व चक्रों से फ्री, मुक्त क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर वो मुक्त नहीं होंगे, हमें मुक्ति कौन देगा, है ना। जो खड्डे में गिरा हुआ व्यक्ति होगा वो ऊपर कैसे आएगा? जो ऊपर जो व्यक्ति है वो खींचेंगे, तभी तो वो नीचे वाला ऊपर आ सकता है। हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति, आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति वही दे सकते हैं जो खुद मुक्त है, जनन मरण चक्र से मुक्त है, है ना। ये चौथी बात हो गई। और पांचवी बात है, वो हमेशा दाता है, सुख दाता है, दुख हरता सुख करता है। कभी वो दुख नहीं दे सकते, वो हमेशा सुख देने वाला है। तो ये पांच मापदंड है परमात्मा आखिर कौन हो सकते हैं, है ना। अभी अलग अलग जो मत है दुनिया में उसको लेते हुए हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे ये परमात्मा हो सकते हैं या नहीं हो सकते, है ना। सबसे पहले जो मान्यता है तो लोग सोचते हैं प्रकृति परमात्मा है, पंच तत्वों को पूजते हैं, प्रकृति परमात्मा कहते हैं। क्या प्रकृति परमात्मा हो सकता है? प्रकृति परमात्मा है, पंच तत्व भूमि आकाश अग्नि वायु जल, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? यस यस कहेंगे। तो परमात्मा अगर है तो फिर लास्ट जो मापदंड है वो कभी दुख नहीं दे सकता। परमात्मा वो है जो कभी दुख किसी को नहीं दे सकते, हमेशा सुख दाता है। तो प्रकृति तो सुख देता ही है लेकिन फिर कभी कभी दुख भी मिल जाता है उससे। भूकंप हुआ, फिर बाढ़ आ गई या कुछ ऐसे प्राकृतिक आपदाएं हो गई तो जिसके कारण से हजारों लाखों लोग इसमें इस पीड़ित हो गए, दुख तो मिल गया ना। तो क्या फिर प्रकृति परमात्मा हो सकता है? क्या प्रकृति परमात्मा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो प्रकृति क्या है फिर? प्रकृति परमात्मा की सुंदर रचना है, है ना। ये शरीर भी प्रकृति है, पंच तत्वों से बना हुआ है। शरीर के साथ पूरी दुनिया में जो पांच तत्व है तो वो परमात्मा की सुंदर रचना है। तो इसलिए कहते हैं ना, ये आपकी रचना इतनी सुंदर तो आप कितना सुंदर होगा, है ना। तो ये सुंदर रचना है तो इसीलिए कहते हैं इस संसार में तीन शक्तियों का खेल है। एक है परमात्मा, प्रकृति और पुरुष। ये तीन सत्ताएं हैं, परमात्मा, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति पंच तत्व है और पुरुष है आत्माएं। केवल मन की बात नहीं हो रही, पुरुष माना आत्माएं, सभी आत्माएं हैं। आत्माएं अनेक है, प्रकृति तो जड़ है लेकिन परमात्मा फिर एक है। परमात्मा जड़ नहीं हो सकते, परमात्मा तो चैतन्य है और प्रकृति तो जड़ है, है ना। तो इसीलिए ये सारी बातों को अगर देखते हैं तो प्रकृति परमात्मा नहीं हो सकती लेकिन प्रकृति परमात्मा की सुंदर रचना है। और दूसरी बात, लोग कहते हैं कि परमात्मा कण कण में होते हैं, कण कण में परमात्मा, या परमात्मा सर्व जग व्यापक है। तो इससे ये होगा, क्या है ये सच या क्या नहीं है ये बात अगर देखते हैं। जब भी हम कई रास्ते चलते, हम कई मंदिर में नहीं है या कोई पूजा जगह के नहीं है लेकिन कहीं जगह पर हम ऐसे रास्ते चलते, कभी भी परमात्मा को याद करना या बातों में अगर कहते हैं तो वो कहते हैं कि ऊपर वाला जाने, है ना। ऊपर वाला जाने माना, ऊपर वाला जाने माना क्या? फर्स्ट फ्लोर में जो व्यक्ति है वो जाने या लास्ट फ्लोर में जो व्यक्ति है वो जाने? तो ऊपर वाला जाने का इसका मतलब क्या है? कोलोकियल लैंग्वेज में ये आता है ना, बोलते बोलते ऊपर वाला जाने, पता नहीं वो जानता है, है ना, ये बातों में आ जाता है। तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि परमात्मा कहीं ना कहीं ऊपर है। इसका मतलब है कहीं यहां है, नहीं है, है यहां है। अगर मान लीजिए, अगर मैं ये बोलूं परमात्मा इस माइक में है, इस चेयर में है, इस टेबल में है, क्या कहेंगे? हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा तो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है। कोई भी अमूल्य चीज है वो कहां रखेंगे आप? कहां रखेंगे, है ना? अगर मान लीजिए आपके पास डायमंड है, बहुत बड़ा डायमंड है, वो कहां रखेंगे? ऐसे वैसे लिविंग रूम में, किचन में या डस्टबिन में डालेंगे क्या आप उसको? कहां रखेंगे उस डायमंड को? तिजोरी में, वो भी अच्छी तरह पैक करके बहुत सुंदर डब्बे में उसको सेफली रखेंगे। वो अमूल्य चीज है, इसीलिए इस चीज को, इस स्थूल चीज जो अमूल्य है उसको ही हम कितना संभाल करते हैं, और वो सर्वोच्च है, सर्व से श्रेष्ठ है। तो ऐसे स्थूल या फिर जड़ चीजों में व्यापक नहीं हो सकते, वो चैतन्य है। हम आत्माओं से भी श्रेष्ठ है, है ना? तो इसके कारण से ये जड़ चीजों में नहीं हो सकते। लेकिन ये क्यों हम बोलते आए समय प्रति समय, ये बोलते आए हैं परमात्मा सर्वव्यापक है, आपको देख रहे हैं, हर घड़ी आपको देख रहे हैं। हमें हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे बोलते आए, हमें साधु संत ऐसे बोलते आए, राइट? तो वो क्यों ऐसे बोलते आए? जहां भी जाओ वो जरूर उपस्थित होंगे, क्योंकि द्वापर युग से जब पाप कर्म बढ़ना शुरू हुआ तब वो डर बिठाने के लिए लोगों में, क्योंकि डर के कारण से वो पाप कर्म काम करते। जैसे बच्चे हैं आपके घर में, वो चुपचाप साइलेंटली रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, लेकिन माता पिता नहीं है घर में तो अपने ही मनमानी करेंगे, राइट? अगर वो चंचल है तो, है ना? तो ऐसे ही कि अगर मुझे ये याद है या मुझे पता है कि परमात्मा मुझे देख रहे हैं, भले मैं अकेली हूं लेकिन फिर भी मुझे परमात्मा देख रहे हैं, तो वो डर रहेगा जिस कारण से मैं पाप कर्म नहीं करूंगी। तो ये डर बिठाने के लिए, ताकि फिर पाप कर्म कम हो। और दूसरी बात है भावनात्मक सत्य है ये बात, भावना तर्क वाला लॉजिक वाला सत्य नहीं है, भावनात्मक सत्य है। क्योंकि अगर मैं परमात्मा के साथ जुड़ी हुई हूं तो फिर मैं कहूंगी मेरे साथ चलो, मैं हमेशा उनकी उपस्थिति महसूस करूंगी। मेरी भावना जुड़ी हुई होने के कारण से उनकी उपस्थिति मुझे महसूस होता है यहां इर्द गिर्द, है ना? और भक्त मीरा ने भी यही कहा, जहां देखो वहां गिरिधर गोपाल ही दिखाई देते हैं। वो तर्क वाला सत्य नहीं था लेकिन भावनात्मक सत्य था, क्योंकि उनकी तार, मन की तार जुड़ी होने का कारण से फिर वो महसूस करते थे कि हाँ वो मेरे साथ हमेशा है। और जब ये महसूस करने लगते हैं फिर लगता है कि हर चीज में, हर व्यक्ति में वही दिखाई देते हैं। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी आए कि आए, अभी इनमें भी वही दिखते, इनमें भी वही दिखते, क्योंकि मेरी मन की तार उनके साथ इतने गहराई से जुड़ी हुए होने के कारण से हर जगह वही दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ये चला आया, है ना? ये तर्क वाला सत्य नहीं है लेकिन भावनात्मक सत्य है कि परमात्मा सब जगह व्यापक है। और तीसरी बात, कुछ लोग ये मानते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, हर एक में परमात्मा का अंश है। क्या कहेंगे इसके लिए? परमात्मा का होना अलग है, परमात्मा का अंश होना अलग है, ओके? हम परमात्मा, मैडम कह रहे हैं कि हम परमात्मा नहीं है लेकिन परमात्मा के अंश है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। परमात्मा के अंश है या परमात्मा के वंश है, आप सोच लीजिए, आप परमात्मा के अंश है या परमात्मा के वंश है? हाँ, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल को इतने छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, तो इतने से छोटे टुकड़े अगर आपने देखा नहीं है एप्पल काटते हुए, किसने दिया इतना सा टुकड़ा, जब आप खाते हो उस टुकड़े को क्या टेस्ट आता है? एप्पल का ही टेस्ट है ना, तो उसमें कोई अंतर नहीं होता। जो पूरे फल में जो टेस्ट था, उस छोटे से पीस में भी वही टेस्ट है। करेले का टेस्ट या फिर कोई संतरे का टेस्ट नहीं आता, या फिर उसके मिठास में भी कम ज्यादा नहीं होता। जो टेस्ट था वही टेस्ट उस पीस में आया। अगर मान लीजिए परमात्मा, एक कुछ लोग ये थियोरी कहते हैं कि परमात्मा इतने बड़े थे, टुकड़े 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 होकर के फिर आत्माएं हुए, तो अगर ये थियोरी माने तो फिर मुझ आत्मा का संस्कार क्या होना चाहिए? परमात्मा जैसे होना चाहिए, उसमें कम ज्यादा नहीं हो सकता। अभी आपको कैसे महसूस हो रहा है? अभी आपका, मैं आती हूं, थोड़ा पूरा कर लूं फिर आपको। तो अभी आप कैसे हैं? या क्या परमात्मा के पूरे क्वालिटीज आपके अंदर हैं? आपके अंदर है? नहीं है। खुद भी महसूस करते हैं कि हम इतने पवित्र नहीं हैं, इतने शक्तिशाली नहीं हैं, तो कम है। इसका मतलब है हम अंश नहीं हो सकते। और वंश, अगर दूसरी बात देखते हैं, वंश अगर आपके बच्चे हैं, राइट, आपके बच्चे आपके जेरॉक्स कॉपी तो नहीं है, आपके जो ट्रेड से सब कुछ 100% आपका उनके अंदर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है, जीन्स जिसको कहते हैं, थोड़े बहुत बच्चों में गया है जीन्स के कारण से वंश, है ना। तो ऐसे ही परमात्मा के जब हम वंश हैं, तो परमात्मा के कुछ गुण शक्तियां अपने में है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ, वो फिजिकल बात है, वो फिजिकल बात है, लेकिन हाँ थोड़ा वो ठीक है। वही बात हम कह रहे हैं ना, जी जी ठीक है, आपकी मान्यता जो है ठीक है, लेकिन अब हम एक में, क्योंकि ये कोई स्थूल चीज नहीं है, परमात्मा ऐसे बट गए, कट गए, तो फिर ऐसा हो गया, तो ऐसे नहीं हो सकता। वंश जब हम कहते हैं, परमात्मा के संस्कार थोड़े बहुत हर एक में है वंश, है ना। तो इसीलिए हम हमेशा परमात्मा को मात पिता बंधु सखा सर्व संबंधों से परमात्मा को याद करते हैं, है ना। तो इसीलिए ये कहा कि हर आत्मा के अंदर परमात्मा का व्यापक नहीं है, लेकिन परमात्मा के कुछ गुण हर आत्मा में व्यापक है, और उसको बढ़ाना या घटाना वो मेरे हाथ में है, उनके जैसे मैं बन सकती हूं। लेकिन परमात्मा तो एक ही है, मैं परमात्मा नहीं बन सकती, लेकिन उसके लेवल तक मैं थोड़ा बहुत जा सकती हूं। इसीलिए आत्माओं में कैटेगरीज है। आत्माओं में कौन कौन सी कैटेगरीज है? सबसे निचला कैटेगरी वो है पाप आत्माओं की, जो बहुत पाप कर्म किए हैं वो पाप आत्माएं कहलाएंगे। और फिर उनके नेक्स्ट कैटेगरी है पुण्य आत्माएं जो बहुत सारे पुण्य कर्म किए हुए हैं, और उनके बीच में साधारण आत्माएं, थोड़े बहुत पाप भी किए हैं, थोड़े बहुत पुण्य भी किए हैं, वो साधारण आत्माएं हैं। पुण्य आत्माओं के ऊपर नेक्स्ट कैटेगरी है धर्म महात्माओं की, जो महान कार्य इस संसार में करके गए हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य, महान कार्य करके गए हैं वो महात्माएं। और उनके नेक्स्ट कैटेगरी है वो है धर्मात्माएं, धर्म स्थापन करके गए हैं, जैसे महात्मा बुद्ध है, या फिर महावीर जी है, मोहम्मद साहब है, या फिर जीसस क्राइस्ट है, या कोई ऐसे बड़े बड़े महंत संत लोग जो होके गए हैं धर्म आत्माएं, वो उस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो महान कार्य से भी ऊपर है, धर्म के कार्य, आत्माओं की उन्नति के कार्य वो करके गए हैं, वो है धर्म आत्माएं। और उनसे भी एक और लेवल ऊपर है आत्माओं की, वो है देव आत्माएं, जिनके अंदर सर्व गुण व्यापक है। तो इसीलिए उनको पांच क्वालिटीज उनको कहते हैं, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्मी। वो सर्व गुणों से संपन्न है, 16 कलाओं में संपन्न है, संपूर्ण निर्विकारी है, विकार का एक भी थोड़ा भी 0.1% भी उनके अंदर विकार नहीं है, निर्विकारी है, अहिंसा परमो धर्मी। हिंसा संकल्प से भी वो लोग हिंसा नहीं करते हैं, स्थूल रूप से छोड़िए, लेकिन संकल्प से भी, मन से भी वो हिंसा नहीं करते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाओं को पालन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, वो हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ सोल्स, हम आत्माओं के हाईएस्ट कैटेगरी है। हम अभी पुरुषार्थ करके परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ के हम उस लेवल तक जा सकते हैं, उस लेवल, पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, फिर देवात्माएं, क्योंकि वो एनर्जी फ्लो होने के कारण से आत्मा बहुत जल्दी शुद्ध पवित्र हो जाती है। तो इसीलिए मंदिरों में जो हम पूजते आए हैं, 33 करोड़ देवी देवताएं जो भारत में गाए हुए हैं, वो कौन है? वो वही आत्माएं जो परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ करके वो देव आत्माएं बनी, और ऑलमोस्ट इक्वल टू गॉड, ऑलमोस्ट इक्वल टू गॉड है, परमात्मा के ऑलमोस्ट नेक्स्ट है। तो इसीलिए उन आत्माओं को, देव आत्माओं को जब हम पूजते हैं, देव आत्माओं के साथ जब हम कनेक्शन जोड़ते हैं, आत्माओं को कुछ प्राप्तियां जरूर होती है। क्यों? क्योंकि हायर लेवल वाले वो आत्माएं होने के कारण से जरूर भक्तों को प्राप्ति होती है। लेकिन हाँ जी, वो फिर तर्क वाली बातें हैं। मान लीजिए कितने सारे हैं, उन शब्दों में ना जाएं, ठीक है। तो इतने सारी देवी देवताओं के जो गायन है दुनिया में, वो देवी देवताएं अनेक है, देव आत्माएं अनेक है, लेकिन परम आत्मा एक है। तो मैं आत्मा पुरुषार्थ करके देव आत्मा तक पहुंच सकती, सर्व गुणों से संपन्न हो सकती हूं, ये पॉसिबल है ना। तो अभी हम देखते हैं सर्व धर्म वाले क्या कहते हैं, क्या निराकार परमात्मा में ये पॉसिबल है। जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में बहुत सारी देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन साथ साथ शिवलिंग की भी पूजा करते हैं। और शिव का मतलब है बिंदु, शिव का मतलब है बिंदु, शिव का मतलब है कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभकारी। और बिंदु को पूजने के लिए वो आकार, लिंग आकार दे करके वो पूजना शुरू किया। तो इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंगम की महिमा है भारत में। कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगम की यात्रा अगर कर लेते हैं तो वो मुक्ति को पा लेते हैं, है ना। शिव की पूजा हिंदू धर्म में करते आए, और वो शिव का मतलब ही है बिंदु, ज्योति, ज्योति है। और मुसलमान धर्म में अगर देखते हैं और हिंदू धर्म में भी शिव के जो नाम है वो सब कर्तव्यवाचक नाम है, और उनके नाम के लास्ट में नाथ या ईश्वर से अंत होता है। सोमनाथ, पशुपतिनाथ, बद्रीनाथ, नाथ, नाथ माना मालिक इस संसार के, और ईश्वर कृष्णेश्वर, रामेश्वर, ईश्वर, ईश्वर माना परमात्मा, है ना। कर्तव्य वाचक नाम है, जो जो कर्म परमात्मा करते हैं तो उसके कर्तव्य वाचक नाम ये सब शिव के मंदिरों को दिया जाता है। और दूसरा धर्म अगर देखते हैं, मुस्लिम धर्म, मुस्लिम धर्म में क्या मान्यता है, अल्लाह नूर है कहते हैं। नूर का मतलब है प्रकाश, ज्योति, है ना। तो वो भी एक निराकार परमात्मा में विश्वास करते हैं, और मक्का के तरफ मुंह करते हुए वो अपना ये जो भी पूजा करते, ये नमाज पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं, लेकिन निराकार परमात्मा में विश्वास करते हैं। अल्लाह में, चाहे वो अल्लाह कहे, ईश्वर कहे, परमात्मा कहे, लेकिन वो ज्योति में ही विश्वास करते हैं, नूर में वो विश्वास करते हैं। और तीसरा धर्म है जो क्रिश्चियनिटी, जो मेन धर्मों का अगर देखते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी ये मान्यता है गॉड इज लाइट। जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा कि आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, और गॉड इज लाइट। लाइट के तरफ उन्होंने इशारा किया। तो इसीलिए चर्चेस में भी वो कैंडल्स जलाते हैं, और हिंदू धर्म में मंदिरों में दिया जलाते हैं प्रकाश के प्रतीक के रूप में। और फिर जापानीज लोग भी 3 फुट के टेबल पर एक गोलाकार का एक पत्थर रख करके उसमें वो मेडिटेट करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं ये बिलीव करते हैं परमात्मा एक प्रकाश है, परमात्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप है। और सिख धर्म में गुरु नानक जी ने क्या कहा, एक ओंकार निराकार, वो भी एक निराकार परमात्मा में विश्वास करते हैं। तो अलग अलग धर्म में अगर देखे हैं, कहीं ना कहीं भले अलग अलग शब्दों को वो यूज कर रहे हैं, लाइट कहे, नूर कहे, ज्योति कहे, या निराकार कहे, तो ये सभी शब्द एक तरफ के इशारा कर रहा है, वो है एक ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा। जब ज्योति बिंदु को हम देखते हैं परमात्मा के रूप में, तो फिर ये पांचों ही बात लागू हो जाता है। जो 5 मापदंड हमने देखा वो पांचों ही बात उसमें लागू हो जाता है। वो सर्वधर्म माननीय ज्योति को, चाहे वो शिव कहे, अल्लाह कहे, या फिर लाइट कहे, तो वो ज्योति सभी धर्म मान रहे हैं कि हाँ ज्योति प्रकाश, ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा है। और वो सर्वोच्च, सर्वोच्च है क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो इसीलिए वो सर्वोच्च है, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। और सब कुछ जानते हुए उनका कर्तव्य क्या है वो भी, क्योंकि जब परमात्मा के साथ हम कनेक्शन जोड़ते हैं हमें ये समझना जरूरी है वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। क्योंकि अभी तक परमात्मा को जो हम याद करते आए हैं अल्पकाल के जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए याद करते आए, हे भगवान मुझे नौकरी दिला दो, मुझे गाड़ी दिला दो, मुझे ये दिला दो, ये प्रॉब्लम है, ये समस्याएं, इसको मिटा दो, इसको कर दो, तो इतने सारे इच्छाएं लेकर के परमात्मा के सामने जाते थे। तो क्या परमात्मा इन इच्छाओं को पूर्ण करते हैं या नहीं करते क्या कहेंगे उनका कर्तव्य क्या है, उनका कर्तव्य क्या है। और ये भी मानते, कुछ लोग ये मानते हैं कि इस संसार में पत्ता पत्ता हिलाने वाला परमात्मा है, हर चीज उनकी इच्छा से होगी, ऐसा है। अगर उनकी इच्छा से होने वाले तो मेरी इच्छा कहां से आ गई फिर उसमें, मेरी इच्छा कहां से आ गई उसमें, ये समझना जरूरी है। पत्ता पत्ता हिलाने वाला परमात्मा नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे इस पूरे ज्ञान सरोवर में कितने सारे पेड़ हैं, एक एक पेड़ में कितने पत्ते हैं, और पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में कितने पत्ते हैं, और बैठ के पत्ता हिलाने का काम है परमात्मा का। ये पत्ता इस तरफ जाओ, ये पत्ता इस तरफ जाओ, ये जाओ वहां जाओ, उसी में उलझे रहेंगे फिर परमात्मा। परमात्मा का कार्य क्या है? जैसे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे मशीन्स लगे हुए हैं, और कोई भी मशीन, छोटा मशीन खराब हो जाता है तो किसको बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर को बुलाएंगे। मशीन खराब होता है तो मैनेजिंग डायरेक्टर को बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे? मैकेनिक को बुलाएंगे, जो उनके उस फील्ड का व्यक्ति है, उस डिपार्टमेंट का व्यक्ति है, उसको बुलाएंगे, उसको ठीक कराएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर को नहीं बुलाएंगे, है ना। तो ये पूरे संसार का मैनेजिंग डायरेक्टर वो है, वो ऐसा काम करेंगे जो लोग आत्माएं नहीं कर सकते, वो काम उनका है। छोटा मोटा काम, इसको रिपेयर कर दो, इसको गाड़ी दिला दो, इसको बच्चा दिला दो, इसको ये कर दो, वो कर दो, नहीं। परमात्मा का एक ही मात्र कर्तव्य है, पतितों को पावन बनाना। जो उनके साथ जुड़ेंगे उनकी, उनको वो शक्ति देना, वो शक्ति मिल जाएगा, लेकिन वो शक्ति को कैसे मैं यूटिलाइज करूं वो मेरी इच्छा है। जैसे आप काम करते हो, जॉब करते हैं, आपको पैसा मिल जाता है, 50,000 1,00,000 जो भी मिलता है महीने में, इतना मिलता है। वो फिर मिलने के बाद आपकी चॉइस है उस पैसे को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। आप मान, चाहे पूरे 1,00,000 को एक मास में खत्म कर दो, चाहे उसको डिपॉजिट करो या दूसरों की हेल्प करो, है ना। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं वो मुझे शक्ति मिल जाती है, लेकिन शक्ति को मुझे कैसे यूटिलाइज करना है वो मेरे हाथ में है। अगर उन शक्तियों को मैं अल्पकाल की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए यूटिलाइज करूं, कर सकती हूं, लेकिन वहां शक्तियां मैंने भोग लिया, उसको डिपॉजिट करके मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये बात है। वो परमात्मा उस इच्छा को पूर्ण नहीं कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्शन जोड़ने के कारण से मुझ आत्मा के अंदर वो शक्ति आ गई, मेरे संकल्पों में शक्ति आ गई, जो मैं सोचूं संकल्प सिद्ध होता जा रहा है, लेकिन शक्तियां भी नष्ट होती जा रही, क्योंकि मैंने डिपॉजिट नहीं किया, उसको फिर मल्टीप्लाई नहीं किया। मल्टीप्लाई करने का तरीका है दूसरों की मदद करके, दूसरों के और जैसे उनके जीवन की उन्नति करने के लिए मैं कंट्रीब्यूट करती जाऊं, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। इट वर्क्स दिस वे, है ना। तो फिर कहेंगे हाँ परमात्मा ये इच्छा पूर्ण करते, नहीं है ना। तो वो फिर इसीलिए फिर परमात्मा का कर्तव्य यह है पतितों को पावन बनाना या आत्माओं को सशक्त करना। और फिर सर्व चक्र से वो न्यारे हैं, जनन मरण के चक्र से न्यारे हैं और कर्म अकर्म विकर्म के चक्र से न्यारे हैं। और हमेशा दाता है, हमेशा देने वाला है, दुख नहीं देता लेकिन दुख हरता सुख करता है। लेकिन कई बार हम कहते हैं ना, जब भी दुख होता है, कहीं भी कुछ ऐसे घटनाएं घटती हैं, तो परमात्मा के साथ लड़ना शुरू करते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, क्या दुख परमात्मा ने दिया? सुख जब मिला तो परमात्मा को थैंक यू किया? नहीं, मेरे कारण से हुआ, मैंने किया, मैंने मेहनत की थी तो इसीलिए यह प्राप्त हुआ मुझे। क्रेडिट तो मैं अपने लिए ले रही हूं जो अच्छा हुआ, लेकिन जब बुरा होता है फिर हम कोसते, हे भगवान तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने वाला परमात्मा है, दुख देने वाला परमात्मा है। बीमारी जब होता है तो उनको खोजते, ऐसा क्यों हो गया, ये हुआ वो हुआ, उसका रिजल्ट क्या, कारण किस कारण से होता है ये सब दुख जीवन में? दुख जीवन में अपने ही कर्मों के कारण से होता है, अपने ही कर्म का डिपॉजिट हुआ है ना पिछले जन्मों से, तो इसीलिए वो डिपॉजिट होने के कारण से कर्म, कर्म का ही फल है दुख या सुख, है ना। जब परमात्मा को जब हम याद करते हैं इतने इंटेंसली, हम आप अगर मेडिटेशन के सेशंस में और आगे बढ़ते हैं तो एक स्थिति होती है बीज रूप स्थिति। इतना कॉन्सेंट्रेटेड बीज रूप स्थिति होते, ऐसे पूरी कॉन्सेंट्रेट करके फोकस हो करके फिर परमात्मा के साथ कनेक्शन पूरी तरह जब हम जोड़ते हैं, जैसे वो अग्नि का काम करता है, वो अग्नि का काम करता है और पूरे जो मेमोरीज है आत्मा के, जो पिछले जन्म के जो मेमोरीज है, नेगेटिव मेमोरीज है या पाप कर्म के मेमोरीज है, वो सब कुछ भस्म हो जाता है। इसीलिए कहते हैं अगर आपको पावन बनना है तो दो तरीकों से आप पावन बन सकते हैं, तीन तरीके, एक है मार से या प्यार से, दो तरीके से, प्यार या मार से आपको पवित्र बनना है, क्योंकि सबको वापस घर जाना है, समय तो आ गया वापस घर जाने का, है ना। जब घर जाना है तो मार से या प्यार से जाना है। प्यार से जाना माना परमात्मा की याद से हम अपने पाप कर्मों को भस्म करते हुए न्यूट्रलाइज कर लो, पावन मुक्त हो जाओ सब पाप कर्मों से। मुक्त जब हो जाते हैं आत्मा फिर मुक्ति धाम जा सकती है। एक है प्यार से, परमात्मा की याद से उनके नियमों को पालन करते हुए वो प्यार से मैं जा सकती हूँ। और दूसरा है मार से, मार से माना कोई ना कोई पनिशमेंट, है ना, बीमारी आ गई या फिर संबंधों में टकराव, उससे भी उसमें भी दुख बहुत मिलता है, राइट, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ ऐसे लाइफ में प्रॉब्लम्स जब होता है तो मन को आत्मा को दुख बहुत मिलता है। दुख से मार से आत्मा पवित्र बन करके फिर वो जा सकती, इट्स अ चॉइस फॉर अस नाउ, मैं मार से जाना चाहती हूँ या प्यार से जाना चाहती हूँ। और परमात्मा ने हमें फ्री विल दिया हुआ है, हर चीज परमात्मा के कंट्रोल में नहीं है। परमात्मा क्या करते हैं, केवल हमें गाइडेंस देते हैं। जैसे आजकल के बच्चे, आप उनको कंट्रोल करने जाएं, उठ तो उठ बैठ तो बैठ, वो सुनना पसंद करेंगे? पसंद करेंगे नहीं, कहते हैं कि मुझे फ्रीडम चाहिए, है ना। हर व्यक्ति को फ्रीडम चाहिए, परमात्मा ने भी हमें फ्रीडम दिया है, फ्री विल दिया है। मुझे क्या करना है नहीं करना है वो मेरा चॉइस है। परमात्मा का कार्य क्या है, वो ज्ञान का सागर है, वो केवल मुझे समझ देते हैं बेटा ये करे तो अच्छा ये करे तो बुरा, मुझे समझ देते हैं, गाइड करते हैं बस। लेकिन अल्टीमेट डिसीशन, लास्ट डिसीशन में मुझ आत्मा का ही होता है, वो कंट्रोल वो नहीं करते, केवल वो समझ देते हैं, वो गाइड करते हैं। तो इसीलिए वो सब कुछ कंट्रोल करने वाला हो, या फिर कहेंगे अगर हम ये कहते हैं ना कि सब कुछ कंट्रोल करने वाला ये है, तो फिर हम कहेंगे कि मेरा क्या है, फिर वो अगर चाहे इन उनकी इच्छा हो तो मैं करूंगी, उनकी इच्छा नहीं होगी तो मैं नहीं करूंगी। तो फिर ब्लेम हम दूसरों पर डालना शुरू करते हैं, ब्लेम हम परमात्मा को इजिली कर लेते हैं, तुम्हारे कारण से हुआ, मेरे कारण से नहीं हुआ, है ना। सारा ब्लेम मेरा खुद के ऊपर है। अभी मुझे मेरे जीवन में अगर सुख हो रहा है मेरे कारण से ही हो रहा है, दुख मिल रहा है वो भी मेरे कारण से ही हो रहा है। जब मैं अपने जीवन के कंट्रोल में खुद ले लूंगी तो फिर मैं ब्लेम गेम नहीं खेल सकती। लेकिन इस प्यार से, उस विश्वास से जब हम परमात्मा को याद करते हुए फिर अपने जीवन को सशक्त, संपन्न, संपूर्ण बना सकते हैं। ठीक है, देवात्मा बनना पॉसिबल है, पॉसिबल है। आप मेडिटेशन के अगले सेशंस में अगर आप सुनेंगे वापस जाने के बाद भी, एक काल चक्र का लेसन है जो हम मानते हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र चला है, हम ये मानते हैं कलयुग है। उससे मुक्त होना है अभी, उसके बारे में पिछले जो हो गया है उसको नहीं सोचना है, अभी परमात्मा की याद से वर्तमान को शक्तिशाली बनाना है। वर्तमान को हम पावरफुल बनाएंगे तो भविष्य उज्जवल होगा ही। उस कंफ्यूजन में कुछ समझ के कारण से ये समझ दिया है बस, लेकिन उस उलझन में नहीं लग, प्यार मार प्यार मार। वो तो राइट बात है, कर्मों के हिसाब किताब चुक तो कर रहे हैं ना, चुक तो कर रहे हैं, लेकिन फिर आगे परमधाम भी तो जाना है अभी कलयुग के लास्ट में। तो लास्ट में जाने से पहले मुझे कर्मों का हिसाब किताब चुक तो करना होगा, चुक तो करने के लिए फिर मार या प्यार, चुक तो किए बिना मैं परमधाम नहीं जा सकती, है ना। अगर चुक तो नहीं करूंगी तो फिर अगले जन्म अगले जन्म अगले जन्म, तो वो नहीं, चक्कर अभी नहीं चलेगा ना, क्योंकि अभी रात है, अंधेरा है, स्वर्णिम सवेरा तो आना ही है, अभी काल चक्र में कलयुग का अंत होना जरूरी है। तो इसीलिए ठीक है, मुझे लगता है बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं आपके मन में, ठीक है कोई बात नहीं, कंफ्यूजन्स ये पता कर लगता है इससे कि आप और कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अब समय की सीमा को देखते हुए मैं सब प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती हूँ। हाँ, कल लास्ट सेशन होगा मेडिटेशन के बारे में, लेकिन उसके बाद जब आप वापस जाएंगे तो जरूर आप सेंटर के साथ जुड़ेंगे और आगे के कोर्स, 7 डेज कोर्स है अपना, तो उसमें पूरा ज्ञान आपको स्पष्ट समझ में आएगा, है ना। बहुत सारे प्रश्न अगर है तो यहाँ भी किसी ना किसी से आप बात कर सकते हैं, या फिर अपने जो सेंटर की बहन है तो उनसे आप बात करके आपके प्रश्नों का को क्लारीफाई कर सकते हैं। चलिए हम थोड़े समय के लिए मेडिटेशन करते हैं। सॉफ्ट म्यूजिक बजा दीजिए। सीधा बैठेंगे, जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे आप मन में विचार करते जाएंगे और विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, महसूस करने की कोशिश करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। मन और बुद्धि को वर्तमान में ले आएंगे, आसपास के वातावरण से, लोगों से मन और बुद्धि को विड्रॉ करें और प्रकृति के बीच में केंद्रित करें। महसूस करें वहां एक चैतन्य सितारा, लिविंग लाइट, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा मैं हूं। इस शरीर को प्राण प्रदान करने वाली मैं आत्मा, मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूं, कंट्रोलर हूं। ये शरीर केवल मेरा वस्त्र है जिसको धारण कर इस कर्म रूपी कुरुक्षेत्र पर कर्म कर रही हूं। जैसे मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, मेरे पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु है, परम है, सुप्रीम है। वो शांति का सागर है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। परमात्मा सागर है। मैं आत्मा गागर हूं। मेरे पिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़कर उनकी शक्तियों को मैं महसूस कर रही हूं, अब्सॉर्ब कर रही हूं, ग्रहण कर रही हूं। सर्वशक्तिमान पिता के मैं अति प्रिय संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्व शक्तियों को अब्सॉर्ब करते हुए मैं अपने मन में क्लैरिटी, बुद्धि को क्लीन करती जा रही हूं। कर्मों को श्रेष्ठ बनाती जा रही हूं, कर्म करते समय भी मैं परमात्मा के साथ जुड़ी हुई हूं।